رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام کو لے کر اس پروگرام کا نام ہے رمضان کی رمضان مبارک کا پیارا پیارا مہینہ جاری ہے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور ہمیں اپنے فیضان سے مالا مال کر رہا ہے پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین اسی مبارک مہینے میں ہمارے کڈس پدری چینل پر اور مدنی چینل پر بہت سارے پروگرامس آتے ہیں پیارے پیارے پروگرامس آتے ہیں ان میں سے ایک پیارا پروگرام ہمارا بھی ہے جس کا نام ہے رمضان کی
رونقیں
رمضان کی رونقیں ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور اس میں بہت ساری معلومات ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے اسٹالس ہوتے ہیں ماجد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماجد بھائی بھی ہمیں بہت ساری باتیں بتائیں گے تو پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین آئیے پہلے آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتے ہیں پیارے بچوں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
ماشاء اللہ زبردست درود پاک کی کثرت کریں اللہ پاک نے چاہا تو اس کی بھی آپ کو بہت ساری برکتیں ملیں گی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا حضور علی الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے ایک بہترین عمل ہے کیا ہے ایک
بہترین
عمل ہے آپ یہاں پر درود پاک پڑھیں اللہ نے چاہا حضور علی الصلاۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئیں گے ٹھیک ہے نا خواب میں دیدار ہو جائے گا کھلے آنکھ سلے اللہ کے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کاش ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں تو درود پاک کی کثرت کریں پیارے بچوں پروگرام کو آگے بڑھائیں گے تلاوت قرآن پاک شامل کریں گے آج ہمارا 15th ایپیسوڈ ہے اللہ اکبر رمضان کا آدھا یوں سمجھیے کہ عشرہ جسے ہم کہیں کہ عشرہ مغفرت کا آدھا گزر چکا اور پورے رمضان کا آدھا 15 روزے ماہ رمضان نصف جو ہے ہم سے گزر چکا ہے رخصت ہو چکا ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے پیارے بچوں کثرت سے درود پاک پڑھیں کثرت سے دعا کریں کثرت سے توبہ اور استغفار کریں اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کریں یہ ماہ رمضان ہمارے لیے باعث مغفرت ہو باعث رحمت ہو باعث جہنم سے آزادی ہو اپنے والدین کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی خصوصاً اپنے والدین کو اپنے پیر و مرشد کو اپنے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ جو دعا کریں گے زیادہ سے زیادہ دیکھیں دعا جو ہے نا یہ بلاؤں کو ڈال دیتی ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے کیا ہے دعا دعا سلاح المؤمن دعا مومن کا ہتھیار ہے تو آپ دعا کریں انشاءاللہ اس کے فائدے آپ کو ملیں گے اگر دنیا میں ظاہر نہیں بھی ہوتے تب بھی آخرت میں تو دعا کے فائدے ہی فائدے ہیں نا پیارے بچوں آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں پہلا اسٹال شامل کرتے ہیں اور بڑھیں گے تلاوت قرآن پاک کی طرف ہمارے ساتھ اشحاب بھائی ہیں اور انشاءاللہ ان سے تلاوت قرآن پاک بھی سنیں گے آئیے شامل کرتے ہیں اسٹال جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک
پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما
پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کی گئی ہمارا پہلا اسٹال یہ اپنے اختتام تک پہنچا، جس کا نام تھا تلاوت قرآن پاک۔ اب آئیے اپنے پروگرام رمضان کی رونقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، اپنے دوسرے اسٹال کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے تلاوت ہوئی ہے، اب انشاءاللہ ترجمہ بھی شامل کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جو تلاوت قرآن پاک سنی وہ ہے سورۃ القارعہ۔ کون سی سورت ہے؟
سورۃ القارعہ،
یہ بھی تیسرے بارے میں ہے، اور اس سورۃ مبارکہ میں قیامت کا ذکر ہے۔ اس کا ذکر ہے
قیامت
کا۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ دل دہلا دینے والی، وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ رنگ برنگی دنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم،
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
جی میرے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کو شامل کر لیا، اور پھر اس کا ترجمہ بھی ہم نے سورہ قاریہ کا، تیسرے پارے میں جو سورت ہے سورہ قاریہ، اس کا ہم نے ترجمہ بھی شامل کر لیا۔ آئیے اپنے پروگرام رمضان کی رونق کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اپنے دوسرے اسٹال کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے دار المدینہ۔
پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں۔
پیارے بچوں، ہمارا اسٹال ہے دار المدینہ، اور صفی اللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صفی اللہ بھائی بھی ہمیں دار المدینہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آگے بتاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا اسلامک اسکولنگ سسٹم دار المدینہ۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں صفی اللہ۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں دار المدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم میں کون کون سی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں۔ دار المدینہ کے بچے اپنے پیارے وطن پاکستان کا یوم آزادی مناتے ہیں، ماحول بہتر بنانے کے لیے پودے لگاتے ہیں، ماحول صاف ستھرا رکھنے کے لیے یوم صفائی مناتے ہیں، اور کلرز ڈے کے تو کیا ہی کہنے، اس دن کلاسز کو رنگوں سے سجایا جاتا ہے۔ اور تو اور دار المدینہ میں اسلامی دن بھی ایکٹیویٹیز کا حصہ ہیں۔ معراج شریف، گیارہویں شریف اور میلاد شریف اور رمضان شریف کے اجتماع ہوتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں، دار المدینہ کو لائٹس اور سبز پرچموں سے سجاتے ہیں، حج ڈے، اسلامیات ویک اور تسبیح ڈے پر بھی خاص رونق ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ظاہر کرنے کے لیے ہفتہ درود پاک مناتے ہیں، ڈیبیٹ اور کوئز کمپٹیشن بھی کروائے جاتے ہیں، ان ایکٹیویٹیز کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، جیتنے والے طلبہ کو انعام بھی ملتا ہے۔ رکیے رکیے، بات ابھی پوری نہیں ہوئی، دار المدینہ کے سائنس ٹیچرز کی تو کیا ہی بات ہے، جو سائنس ایگزیبیشن کرواتے ہیں، اس لیے تو آپ کو یہاں ننھے سائنسدان بھی ملیں گے جو سائنسی ماڈلز بناتے ہیں۔ دار المدینہ کے طلبہ کو ٹریفک رولز بھی سکھائے جاتے ہیں، طلبہ تعلیمی دوروں پر بھی جاتے ہیں جہاں وہ نئی نئی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوں اور سمر کیمپ نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ سمر کیمپ اور معلوماتی سیشن میں طلبہ زندگی گزارنے کے سکل سیکھتے ہیں۔ دار المدینہ کے طلبہ مدنی مذاکرے میں بھی تو شرکت کرتے ہیں، امیر اہل سنت کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور انعام بھی حاصل کرتے ہیں۔ ایکٹیویٹیز ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں، ذرا یہ بھی تو دیکھیے، ورلڈ ہیلتھ ڈے، प्रोफेशन डे, पेरेंट्स डे, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, एक्टिविटी डे, स्पेलिंग कॉम्पिटिशन, फ्रूट डे, क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशन, पोस्टर एग्जीबिशन। दारुल मदीना में एक्टिविटीज सारा साल जारी रहती हैं। इनसे तलबा की बुनियाद मजबूत होती है, इनके स्किल्स में इजाफा होता है। याद रखिए, स्कूल की जिंदगी को बामकसद बना लिया जाए तो कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाना आसान हो जाता है।
सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स पद्री चैनल के नाज़रीन, दारुल मदीना जो दावत इस्लामी का इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो दुनियावी तालीम और इसके अलावा दीनी तालीम भी हमें दी जाती है। जो बच्चे दारुल मदीना में पढ़ते हैं उन्हें तो पता भी होगा कि क्या क्या एक्टिविटीज वहाँ पर रहती हैं। दुरूद पाक की भी अलग से महफिल लगाई जाती है, और हमारी जो शुरू में असेंबली होती है दुआए मदीना, असेंबली को हम लोग दुआए मदीना कहते हैं, और दुआए मदीना में भी हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई जाती हैं। मदीने पाक जाने की दुआ कराई जाती है, अता कर दो मदीने की इजाजत या रसूलल्लाह, करूँ मैं सब्ज गुंबद की जियारत या रसूलल्लाह। तो हमारे स्कूल का आगाज इस तरह से होता है कि तिलावत होती है, नाज शरीफ होती है, दुआएं होती हैं, मुनाजात होती है, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ एक्टिविटीज भी
शामिल। सफीउल्लाह भाई ने तो आज जो चीजें बयान की, 12वीं शरीफ मनाई जाती है धूमधाम से, 11वीं शरीफ, हज डे होता है, इसी तरह कलर्स डे, समर कैंप और दीगर जगह, और दीगर जगह पर लेकर भी जाया जाता है, सीखने सिखाने का सिलसिला होता है, सेशन होते हैं। दुनियावी तालीम भी है लेकिन दीनी और शरीयत की पाबंदी, शरीयी लिहाज से जो उसूल, जो कवानीन, जो रूल्स हमें दिए गए हैं उनको भी फॉलो किया जाता है, और दोनों को बैलेंस करके बच्चों को चलाया जाता है, उनकी तरबियत की जाती है माशाल्लाह। आइए बढ़ते हैं अगले स्टॉल की तरफ। ये था दारुल मदीना का स्टॉल, बढ़ने जा रहे हैं नात के नूर स्टॉल की तरफ, जिसमें हम सुनेंगे इंशाल्लाह कलाम।
प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें,
सबसे
से ओ ला ला ला।
سبحان اللہ کلام سنایا ہمیں حذیفہ بھائی نے, اور ہمارے مشہد بھائی نے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, ہمارا نبی. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, ہمارے یہ اسٹال بھی اختتام تک پہنچا. آئیے اگلے اسٹال کی طرف بڑھتے ہیں, اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور انفارمیشن بھی حاصل کریں گے. ہمارے کتمیر بھائی کا اسٹال ہے اور اسٹال کا نام ہے مکتبۃ المدینہ.
پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں.
جی پیارے بچوں ہمارا اسٹال ہے مکتبۃ المدینہ, کتمیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھتے ہیں آج کون سے رسالے کون سے کتاب کے بارے میں آج ہمیں بتانے والے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے ہیں کتمیر بھائی آپ؟
الحمد اللہ رب العالمین.
الحمد اللہ رب العالمین. اللہ آج کون سے رسالے کون سے کتاب کے بارے میں بتائیں گے؟
آج میں آپ کو اسلام کی بنیادی باتوں کا پارٹ ٹو بتاؤں گا.
اسلام پارٹ ون,
پارٹ ون پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا,
پارٹ تھری,
پارٹ تھری اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے.
اگلے ایپیسوڈ میں آج بھائی بتا رہے ہیں اسلام کی بنیادی باتیں پارٹ
ٹو.
کیا بتانے جا رہے ہیں یہ تو ابھی آپ بتائیں گے, ابھی پتہ چل جائے گا. چلیں بھائی شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کتمیر بھائی ہمیں کیا کیا باتیں اس میں بتائیں گے, کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں توجہ کے ساتھ, اور اچھی اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں اینڈ میں, کوئی نہ کوئی سنت بتائیں گے, آداب سکھائیں گے. جی کتمیر بھائی.
جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم آپ کو اس بکلیٹ کا تعارف پیش کریں گے, وہ بہت ہی انفارمیٹیو بکلیٹ ہے. تو یہ رہا وہ بکلیٹ جس کا نام ہے اسلام کی بنیادی باتیں پارٹ ٹو. چلیں آپ کو بتاتے ہیں اس بکلیٹ میں کیا کیا بیان ہوا ہے. سب سے پہلے اس بکلیٹ میں کلام اور اس کے بعد نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ اس میں آپ آخری کے 3 کلمے اور 15 دعائیں اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکیں گے, اور آپ اس میں پڑھیں گے اللہ پاک اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انفارمیٹیو باتیں, انبیاء اکرام اور ان کے معجزات, مشہور آسمانی کتابیں اور قرآن پاک کے بارے میں انفارمیٹیو باتیں, صحابہ اکرام اولیاء اکرام اور ان کی کراماتیں, نماز کے شرائط فرائض اور نماز کا مکمل طریقہ اور سنت آداب, اسلامی مہینے کے بارے میں معلومات, اور اس کے علاوہ بہت سی انفارمیٹیو باتیں آپ اس بکلیٹ میں پڑھ سکتے ہیں, اور آپ یہ بکلیٹ کسی بھی مکتبۃ المدینہ کی برانچ سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں. چلیں آپ کو اس بکلیٹ میں سے ناخن کاٹنے کی سنتیں اور آداب بتاتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, جمعہ کے دن ناخن کاٹنا پسندیدہ یعنی مستحب ہے, لیکن اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کیجیے. جو جمعہ کے دن ناخن کاٹے تو اللہ پاک اسے دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا, اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے. ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے رائٹ ہینڈ یعنی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چھوٹی انگلی تک ناخن کاٹے جائیں, مگر انگوٹا چھوڑ دیجئے. اب لیفٹ ہینڈ یعنی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کر ترتیب وار انگوٹے تک ناخن کاٹ لیجئے. اب آخر میں رائٹ ہینڈ یعنی سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹ لیجئے. پاؤں کے ناخن کاٹنے کے لیے کوئی خاص ترتیب نہیں ہے, بہتر یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے تک ناخن کاٹ لیجئے, پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر چھوٹی انگلی تک ناخن کاٹ لیجئے. یہ تھی کچھ انفارمیٹیو باتیں اسلام کی بنیادی باتیں پارٹ ٹو سے. صلوا علی الحبیب.
ماشاء اللہ زبردست کتمیر بھائی, کمال کر دیا. کلام اس میں شامل ہے پیارے بچوں اسلام کی بنیادی باتیں پارٹ ٹو میں, نعت اس میں ہے, انبیاء کے معجزات اس میں پڑھ سکتے ہیں آپ, 3 آخری کلمے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, 15 دعائیں بھی شامل ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور پھر اینڈ میں کتمیر بھائی نے ناخن کاٹنے کی سنتیں اور آداب بھی بتا دیے. چلیں بھائی کون بتائے گا, سن تو لیے اب کس طرح ناخن کاٹنے چاہیے بتائیں گے آپ. چلیں بتائیں.
سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے لے کر چھوٹی انگلی تک, اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے لے کر انگوٹھے تک, پھر انگوٹھا.
پھر اس کا طریقہ یہ ہے, ہاتھ کو یوں رکھیں, یوں رکھیں ہاتھ کو, یہاں سے شروع کرنا ہے, کہاں سے؟ اور یہاں ختم کرنا ہے, یہاں سے شروع اور یہاں پر ختم. ٹھیک ہے, تو یہاں سے شروع ہوگا تو آپ لائن سے چل جائیں گے, یہ بھی شامل ہو گیا, سب کچھ آ گیا, اور اینڈ یہ سب اٹھے. سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے سٹارٹ ہے, اور سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پر کیا ہے؟ اختتام ہے. بس سیدھا سمپل طریقہ ہے. کیا ہے؟ सिंपल तरीका, बीच में से कहीं पर नहीं आना, आपने यूं रखना हाथ और गिनते जाए, पहले ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ और ठीक है। तो प्यारे बच्चों नाखून काटने का सुन्नत तरीका आपने सीखा माशाल्लाह, कितनी मैंने आपको बताया, इस पर आप अमल भी करें, क्या करेंगे
अमल भी करें,
बताया जा रहा है उसको याद करें आप, उसे दूसरों तक पहुंचाएं और खुद भी अमल करें, जब भी नाखून काटें तो गौर कर लें कि सीधे हाथ की उंगली से काट रहा हूं नहीं काट रहा, देखें तो सही आप, अच्छा नीयत भी पहले शामिल हो तभी तो नीयत का सवाब मिलेगा आपको, सुन्नत की नीयत होगी कि मैं सुन्नत तरीके से काटूंगा और फिर काट रहे हैं आप तो इंशाल्लाह फिर इसके आपको सवाब भी मिलेगा माशाल्लाह। बढ़ते हैं स्टॉल की तरफ जिसका नाम है तोहफों का काउंटर।
प्यारे नबी की सुन्नत रमजान की रौनक।
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन आ चुके हैं स्टॉल की तरफ जिसका होता है इंतजार यहाँ पर बैठे हुए
बच्चों को।
जी हाँ क्योंकि तोहफे मिलते हैं और आप तक इल्मे दीन भी पहुँचता है। आइए शुरू करते हैं तोहफों का काउंटर, निहाल भाई सवाल करेंगे, शाह साहब भी रेडी हैं तोहफे लेकर। जी निहाल भाई
जी पहला सवाल, टीम कौन सी टीम से, टीम टीम ए से पहला सवाल, बताइए नमाज के कायदे में दुरूद शरीफ से पहले क्या पढ़ते हैं, नमाज के कायदे में
पहले तो पूछेंगे कायदा कहते किसे हैं, कायदा है कायदा है कौन सा ये कायदा है। जी एक ने हाथ उठाया पहले आपने, सीधे हाथ से माइक ले बेटा, सीधे हाथ से
मदनी कायदा,
क्या बात है भाई आपकी, क्या नाम है आपका,
अब्दुल
राफे भाई, चले अब्दुल राफे भाई उनको माइक दे दोबारा। जी आप बता कौन सा कायदा है ये,
सूरह फातिहा और पढ़ना।
कायदा किसे कहते हैं, कायदा नमाज में करते हैं भाई कायदा। चले भाई सफीउल्लाह भाई से पूछते हैं,
अत्तहियात में बैठने को कायदा कहते हैं,
अत्तहियात किसे कहते हैं सफीउल्लाह भाई,
तशहुद
तशहुद तशहुद किसे कहते हैं, अत्तहियात किसे कहते हैं, तशहुद। वाह चले भाई सफीउल्लाह भाई का जवाब दुरुस्त है। जी हाँ कायदा यूँ समझिए आसान मानो में कि हम जब चार रकात वाली नमाज पढ़ते हैं तो दो रकात के बाद सजदा जब दूसरा करते हैं तो हम खड़े
नहीं होते
बल्कि हम क्या करते हैं बैठ जाते हैं, तो ये बैठना कायदा है, ये बैठना क्या है कायदा है, इसमें हम पढ़ते हैं फिर तशहुद जिसे कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु ठीक है, फिर एंड तक पढ़ते हैं। अगर ये कायदा आखिरा होता है, क्या होता है कायदा
आखिरा,
यानी एक तो होता है कायदा उला जिसे कहते हैं पहला कायदा और दूसरा कायदा, चार रकात वाली नमाज में अगर हम दूसरी रकात के बाद बैठ रहे हैं तो वो कहलाएगा फर्स्ट, क्या कहलाएगा पहला कायदा, और उसमें ये है कि पहले कायदे में हम पढ़ते हैं सिर्फ तशहुद, क्या पढ़ते हैं
तशहुद,
वो भी फर्ज सुन्नत मौक्कदा और वितर के अंदर, क्या पढ़ते हैं हम सिर्फ तशहुद पढ़ते हैं ठीक है। अच्छा नफिल होती है तो फिर हम तशहुद भी पढ़ लेते हैं और दुआ भी पढ़ लेते हैं और दुरूद इब्राहिम भी पढ़ लेते हैं, जिस तरह असर की चार सुन्नतें गैर मौक्कदा जो कबलिया होती हैं असर से पहले नमाज फर्ज से पहले, तो उसमें जो पहला कायदा होता है उसमें हम तीनों चीज़ें पढ़ लेते हैं ठीक है पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सुन्नत मौक्कदा है जो वितर है और जो फर्ज चार रकात वाले और तीन रकात वितर में, तो इनमें जो पहला कायदा होता है उसमें हम सिर्फ पढ़ते हैं तशहुद तहिया ठीक है, ये कहलाता है कायदा उला। अब जो इनमें आखिरी कायदा जो चार रकात के बाद या तीसरी रकात वितर में हम बैठते हैं तो वो क्या कहलाता है अखीरा, और उसमें हम पढ़ते हैं तहियात दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा पढ़ते हैं, तो ये है सारी चीजें समझे अब आप। तो जवाब किसने दिया था भाई, शफीउल्लाह भाई को मिलेगा अब तोहफा, आ जाए भाई शाह साहब एक तोहफा शाह साहब को भी मिलेगा यार, शाह साहब भी सबको तोहफा दे रहे होते हैं। चले भाई माशाल्लाह जजाकल्लाह जजाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। जी निहाल भाई
जी अगला सवाल टीम बी से, और सवाल है कुरान पाक में किस रात को हजार महीनों से बेहतर कहा गया है।
चले भाई हजार महीनों से बेहतर है वो रात, अनस भाई बताएंगे, चले अनस भाई तो जवाब
शबे कदर की रात,
कौन सी रात है शबे कदर की रात, हजार महीनों से बेहतर रात है शबे कदर, हजार महीनों से बेहतर है माशाल्लाह। अनस भाई का जवाब दुरुस्त है और अनस भाई के लिए तोहफा शाह साहब ला रहे हैं, चले भाई जल्दी से शाह साहब तोहफा देते हैं अनस भाई को। जी निहाल भाई दूसरा क्वेश्चन।
जी अगला सवाल, खजूर को अरबी में क्या कहते हैं,
खजूर को अरबी में क्या कहते हैं, खजूर खा तो रहे हैं इफ्तारियों में, कभी सोचा कि अरबी में क्या कहते हैं, बताएं भाई।
जी
आ रहा है भाई अनस भाई को आ रहा है, कहीं से तो आ रहा है कुछ, कहीं अभी रुका हुआ बस आने वाला है, चले मशहद भाई से ले जाते जवाब। मशहद भाई बताएं,
खजूर को अरबी में तमरून बोलते
हैं। तमरून बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
तमरून।
तमरून बोलते हैं। मशहद भाई का जवाब दुरुस्त है। और शाह साहब तोहफा बाद में ले जाएगा, शाह साहब बाद में। चले नयाल भाई एक और सवाल
जी। अगला सवाल, औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल फरमाया?
क्या बात है भाई, औरतों में सबसे पहले इस्लाम, ये तो आसान है थोड़ा। नहीं आ रहा है, अहमद भाई को भी नहीं आ रहा, अब्दुल्ला भाई को भी नहीं आ रहा है भाई। वो पीछे 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 पीछे,
हजरत
खदीजा रदी अल्लाह अन्हा जवाब
दुरुस्त
है। और ये है उम्मुल
मुमिनीन,
माशाल्लाह जबरदस्त। चले भाई तोहफा दे दें आपके बराबर में, शाह साहब दे दें जी। निहाल भाई
जी अगला सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अंगूठी में क्या लिखा हुआ था?
वाह,
अंगूठी में क्या लिखा,
क्या लिखा था बताएं
जी।
शाह साहब निहाल भाई आप पूछें, आप बताएं।
आप बताइए।
अल्लाह मोहम्मद,
अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ, बस। चले भाई उज़ैफा भाई को दे माइक। उज़ैफा भाई
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल
पहुंच रहे, कलिमा तैयबा कौन रह गया। चले भाई ये पूछते हैं हम आदिल भाई से, बता दें आदिल भाई।
खातमुन
नबीयीन,
लबैक
नहीं पहुंच रहे भाई,
लबैक
लबैक लबैक तो कर रहे हैं लेकिन जब जा रहे हैं तो जवाब भी नहीं दे रहे हैं आप लोग। चले जवाब मैं देता हूँ, जवाब में अंगूठी में लिखा हुआ था जो हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अंगूठी मुबारक है उसमें ये लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या लिखा हुआ था?
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये लिखा हुआ था। ये आपकी मोहर वाली, जिससे आप मोहर भी लगाया करते थे, मोहर चलती थी ना पहले अंगूठी की, तो ये आपकी अंगूठी मुबारक में लिखा हुआ था माशाल्लाह जी। नेक्स्ट
जी आखिरी सवाल,
आखिरी सवाल है भाई।
जो अभी हमने बताया कि अंगूठी में मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या है?
कौन बताएगा? सबसे सवाल है मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है? चले भाई आप बताएं।
मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह के
रसूल हैं।
क्या कहते हैं निहाल भाई आप?
दुरुस्त
है भाई जवाब, दुरुस्त है। आ जाए शाह साहब जल्दी से आ जाए, शाह साहब आ रहे माशाल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाजरीन, ये था हमारा सेगमेंट तोहफों का काउंटर, और अच्छे अच्छे सवाल हुए आप तक, इल्मे दीन पहुंचाया गया और तोहफे भी यहाँ पर तकसीम हुए। आइए बढ़ते हैं अगले स्टॉल की तरफ, और अब जिस स्टॉल की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्यारे नबी की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की
जी। प्यारे बच्चों हमारा स्टॉल है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अदील भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और अदील भाई के पास आज जो है तेल भी रखा हुआ है, इसके अलावा मिसवाक भी है, तस्बीह भी है, इमामा भी है। अदील भाई आज कौन सी सुन्नत के बारे में बता रहे हैं?
आज मैं आपको इंशाल्लाह इमामा शरीफ के बारे में बताऊंगा।
इमामा शरीफ
के बारे में भाई, जबरदस्त जी भाई बताएं अदील भाई।
प्यारे बच्चों हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने सर मुबारक पर इमामा शरीफ सजाया।
क्या बात है भाई माशाल्लाह, दिल में जज्बा आ गया तो।
और हमें भी इमामा शरीफ पहनने की तरगीब इरशाद फरमाई है।
क्या बात है भाई माशाल्लाह।
प्यारे बच्चों इमामा शरीफ की स्टार्टिंग हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। जिस वक्त आप जन्नत से तशरीफ लाए तो फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को इमामा शरीफ बांधा। प्यारे बच्चों मैं आपको इस सुन्नत के बारे में कुछ इंफॉर्मेटिव और फायदे की बात बताता हूँ। नंबर वन, फरिश्ते भी इमामा शरीफ पहनते हैं। नंबर टू, इमामा शरीफ को मुसलमानों का ताज फरमाया गया है। नंबर थ्री, इमामा शरीफ बांधते टाइम हर पेज के बदले एक नेकी मिलती है, और खोलते टाइम हर पेज पर एक गुना माफ होता है।
माशाल्लाह दिल भाई क्या बात है जबरदस्त। प्यारे बच्चों ये पेज का जो जिक्र हुआ ना अभी, आप कौन सा पेज समझ रहे हैं? हाँ ये जो है ना, ये जैसे अभी आप खोल नहीं सकता, मैं इमामा खुल जाएगा, तो ये जो है ना यूं खोलेंगे जब, ये हम शुरू से शुरू करते ना बांधते वक्त, तो ये एक पेज होता है ठीक है, ये दूसरा पेज, फिर ये तीसरा पेज, तो ये एक एक पेज कहलाते हैं। जितने पेज बांधते जाएंगे उतना सवाब मिलता जाएगा, नेकी मिलती जाएगी। फिर खोलते हुए बाज औकात बच्चे क्या करते हैं, फौरन उठा के रख दिया, नहीं इसको बाकायदा खोलें। आप क्या करेंगे, इसको खोलेंगे इस तरह, यहाँ से खोलें यूं उतारें, जैसे जैसे पेज खोलते रहेंगे नियत करेंगे तो इंशाल्लाह गुनाह भी मिटते रहेंगे, एक पेज पर एक गुना मिटता रहेगा ठीक है। बाज़ औक़ात बच्चे डायरेक्ट उतार कर जो रख देते हैं, तो खोलें इसको, क्या करेंगे खोलेंगे। हाँ, रख देने से गुनाह नहीं मिलेगा ऐसे, लेकिन जाहिर सी बात है गुनाह मिट रहे हैं जब, तो गुनाह तो हमें कम करवा देना अपने। प्यारे बच्चों, अमामा शरीफ मुसलमानों का ताज है, फरिश्ते अमामा शरीफ पहनते हैं, और मजे की बात यह है कि नमाज अमामा शरीफ के साथ पढ़ना
सत्तर,
बगैर अमामा शरीफ के पढ़ी हुई नमाज से कितने गुना अफजल है,
सत्तर
गुना अफजल है। तो सवाब कमाएं, अमामा शरीफ बांधे। जुमा अल्लाह अकबर, जुमे की नमाज आप पढ़ने जा रहे हैं और अमामा शरीफ सर पर सजाया हुआ हो, इतना सवाब मिलेगा आपको। तो कोशिश करें खुसूसन जुमा की नमाज में अमामा शरीफ सजाएं, सुन्नत की नीयत अपनाएं और सजा के रखें, इंशाल्लाह इसकी आपको बरकतें मिलेंगी। देखें हमने सजाया हुआ है ना माशाल्लाह, यहाँ पर कितमीर भाई ने सजाया हुआ है, कितने प्यारे लग रहे हैं। अमामा शरीफ सुन्नत भी है, अभी से सजाएं, अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकतें अभी से शुरू हो जाएंगी, बड़े होकर भी आपकी आदत बनी रहेगी, अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकतें मिलती रहेंगी माशाल्लाह। सेगमेंट था प्यारे नबी की सुन्नत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब निहाल भाई की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे प्रोग्राम में हम क्या शामिल कर रहे हैं। जी
प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत भी सीखी और इसके जो है हमने इंफॉर्मेशन इस हवाले से सुनी। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, रमजान की रौनक के प्रोग्राम है, आइए इसमें शामिल करते हैं बच्चियों का सेगमेंट जिसका नाम है प्यारी कलियां।
प्यारे नबी की सुन्नत रमजान की
एक कौवा एक तोता था पिंजरा काफी छोटा था। एक कौवा एक तोता था पिंजरा काफी छोटा था, दोनों एक पिंजरे में कैद, दोनों ही का मुंह तस है। एक कौवा एक तोता था, तोता दिल में कहता था काश के कौवा ना होता, हर पल सामने रहता है इसको देखना पड़ता है। बदसूरत गे काला गे किससे पड़ गया पाला गे, काश कि ये हो मुझसे दूर, मैं पिंजरे में हूँ मजबूर। कौवे का ता इस पे जोर, तोता कितना करता शोर, टैटे करता रहता है देखो तो डर लगता है, लगता है ये कितना बुरा, रहता हूँ मैं डरो डरो, काश यहाँ ये ना होता, इसकी जगह कौवा होता। कोशिश में अपनी अपनी फेल हुए जब दोनों ही, दोनों ने मिला के हाथ जोर लगाया फिर एक साथ, तोड़ दिया पिंजरे का गेट, दोनों ने फिर किया नवेट, अपने बाजू खोल दिए दोनों ने और तोल दिए। प्यारे बच्चों बात सुनो, आपस में मिलजुल के रहो, रंगो नस्ल की नफरत को अपने दिल से दूर रखो। एक कौवा एक तोता, एक कौवा एक तोता।
प्यारे बच्चों, हमें सबके साथ मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, क्योंकि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम से अच्छी अच्छी बातें करते, उनमें मिलजुल कर बैठते और उनके बच्चों को गोद में बिठाते और प्यार करते थे।
प्यारे बच्चों, देखा आपने प्यारी कलियां सेगमेंट था और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई, तो नियत कर लीजिए कि इंशाल्लाह इन बातों पर अमल करेंगे और दूसरों को भी इन बातों के हवाले से बताएंगे। प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, नात का नूर जो हमारा सेगमेंट है उसमें जो मुकाबला होता है, अब मुकाबले की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं इंशाल्लाह किस अंदाज में मुकाबला किया जाता है। तो शुरू करते हैं नात का नूर मुकाबला।
प्यारे नबी की सुन्नत रमजान की रौनकें।
प्यारे बच्चों, शुरू हो चुका है नात का नूर स्टॉल और इसमें है कुछ मुकाबले की सूरत होगी। मशहद भाई हैं, हुज़ैफ़ा भाई हैं, तैयार हैं हुज़ैफ़ा भाई? कुछ अशआर हम सुनेंगे इंशाल्लाह, मजा आएगा। मशहद भाई से पहला हम शेर सुनते हैं। मशहद भाई को ऐसा शेर सुनाएं जिसमें लफ्ज आता हो खाक, खाक आता हो।
खाके मदीना होती मैं खाक सार होता, होती रहे मदीना मेरा गुबार होता।
मशहद भाई का जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह, जबरदस्त भाई। आएंगे हुज़ैफ़ा भाई की तरफ। जी हुज़ैफ़ा भाई, चले आप ऐसा शेर सुनाएं जिसमें आता हो लफ्ज़ सलाम।
मुस्तफा जान रहे बिलाको सलाम।
आगे
जमाए बज़्म हिदायत बिलाको सलाम।
हुज़ैफ़ा भाई का जवाब दुरुस्त है। चलें भाई दुरुस्त हो गया है। चलें मशहद भाई आपसे थोड़ा मुश्किल करते हैं कि आप जो है ना थोड़े और हैं भी माशाल्लाह। आप कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज आता हो फूल।
फूल क्या देखूं मेरी आंखों में दश्ते तैबा के खार फिरते हैं।
फूल क्या देखूं मेरी आंखों में दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। जवाब दुरुस्त है। कोई और शेर सुनाएगा फूल से हैं? अदिल भाई सुनाएंगे। चलें अदिल भाई सुनाएं।
क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की जहराए कली जिसमें हसन और हुसैन फूल।
जहराए कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। जवाब दुरुस्त है। चलते हैं अब उदयफा भाई की तरफ। उदयफा भाई आसान करते हैं आपसे। आप कोई ऐसा शेर सुनाए जो आपका दिल चाह रहा हो।
काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ो दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ो दुरूद।
तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ो दुरूद। जवाब दुरुस्त है। चले भाई मशहद भाई ऐसा शेर सुनाए इसी सलाम का जो हा से शुरू होता हो। हा और मीम से शुरू हो रहा है। हा और मीम से। अब तो आसान कर दिया मैंने। हा और मीम से। चले भाई मशहद भाई थोड़ा फंस गया। हमने खता में न की तुमने अता में न की कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ो दुरूद। चले इसका मकता सुना दे मशहद भाई।
काम हो ले लीजिए तुमको जो राजी करे ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ो।
ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ो दुरूद। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों हमारा नातिया मुकाबला भी मुख्तसर सा था और इसमें हमने अशार सुने मुख्तलिफ। अल्लाह पाक हमें अशार सीखने वाला भी बनाए और अच्छी शायरी सीखें, नातिया शायरी पढ़ें, आला हजरत के कलाम को सीखें समझें पढ़ें इंशाल्लाह इसकी भी बरकतें मिलेंगी। आइए बढ़ते हैं ब्लेसिंग सेगमेंट की तरफ जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हसन भाई। इनकी तरफ बढ़ेंगे और आज देखते हैं कि क्या क्या नेमतें लेकर आए हैं और कौन सी नेमत के बारे में ये बताने जा रहे हैं। शुरू करते हैं स्टॉल जिसका नाम है ब्लेसिंग्स।
प्यारे नबी की सुन्नत रमजान की रौनकें।
जी प्यारे बच्चों हमारा स्टॉल है ब्लेसिंग्स का, नेमतों का। आप देखते हैं हसन भाई आज क्या क्या लाए हैं। देख तो बहुत कुछ चीजें रही हैं। अंगूर भी हैं, तस्बीह भी है, शहद भी है और इसके अलावा भी कुछ रखा हुआ प्याली में। तो शहद क्यों लाए? पीने के लिए लाए गए हसन भाई?
नेमत है ना भाई शहद। तो शहद के बारे में बताया हसन भाई ने। हसन भाई आज क्या बता रहे हैं?
आज जैतून के बारे में बता
रहे हैं। जैतून, क्या बात है भाई। जैतून का जिक्र कुरान पाक में आया है।
सुभान अल्लाह।
हो सकता है हसन भाई बताएंगे अभी। जी हसन भाई आपकी तरफ आएंगे और शुरू करें आप।
प्यारे बच्चों आज हम आपके लिए जो नेमत लाए हैं वो है जैतून। अल्लाह पाक सूरह तीन में इरशाद फरमाता है वत्तीनी वज़ैतूनी, यानी अल्लाह पाक ने जैतून और अंजीर की कसम इरशाद फरमाई है। तो आज बात करेंगे जैतून पर। प्यारे बच्चों कुरान पाक में जैतून के दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी जैतून को इस्तेमाल किया है। जैतून का तेल जिसे इंग्लिश में ऑलिव ऑयल कहते हैं, ये सेहत के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। जैतून एक दरख्त है जिसका फल जैतूना या जैतून या ऑलिव कहलाता है। इसके मुख्तलिफ जायके होते हैं और बच्चों के लिए तो बहुत हल्की गिजा है। चलें अब बात करते हैं जैतून के दरख्त की। तो प्यारे बच्चों तूफान नूह अलैहि सलाम के बाद सबसे पहले जो दरख्त जमीन पर उगा वो जैतून का था। जैतून का दरख्त इंसान की तारीख का एक कदीम तरीन दरख्त है। बच्चों जैतून के दरख्त की उम्र बहुत ज्यादा होती है, यहाँ तक के बाज़ आलिमों ने फरमाया है कि 3000 साल तक ये दरख्त बाकी रहता है। बच्चों जैतून आपकी स्किन, बालों, दिल और दिमाग को मजबूत बनाता है। जैतून आपकी मेमोरी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। बच्चों जैतून के दरख्त के लिए 70 अंबिया कराम ने बरकत की दुआ मांगी है। बच्चों जैतून एक बड़ी बरकत वाला दरख्त है। यूं तो और जगह ये दरख्त बगैर किसी मेहनत के होता है, लेकिन खास तौर पर मुल्क शाम और आम तौर पर मुल्क अरब में ज्यादा होते हैं। तो ये थी जैतून के बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें। फिर हाजिर होंगे कुछ नई नेमतों के साथ। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
माशाल्लाह जबरदस्त, क्या इन्फॉर्मेशन आपने दी है जैतून के बारे में। अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने वाला बनाए। प्यारे बच्चों हम देखें कि हमारे इर्द गिर्द कितनी नेमतें हैं। आज तो जैतून का जिक्र हुआ, पिछले दिनों शहद का, अंगूर का, यानी ये वो नेमतें हैं जो आसानी से हमें, चले जैतून तो अगर कहेंगे भाई आसानी से कहाँ मिलता है, अंगूर तो मिल जाते हैं, शहद भी मिल जाता है। तो हम नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करते, करना चाहिए। नेमतें इस्तेमाल करते हैं लेकिन उस पर शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तुम्हें तुम्हें ज्यादा दूंगा। क्या दूंगा?
ज्यादा दूंगा।
यानी एक तो ये ना कि मैं तुम्हें दूंगा शुक्र अदा करने पर, जो मिला था उससे अब क्या मिलेगा?
ज्यादा मिलेगा।
ज्यादा मिलेगा ना, तो ज्यादा मिल रहा है नेमतों पर शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। इसकी बरकतें मिलती रहेंगी, मिलती रहेंगी और मिलती रहेंगी। माशाल्लाह। निहाल भाई क्या क्या बताया जैतून के बारे में?
बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारी चीजें बताई। अंबिया इकराम से भी इसको उतार लुके, एक तो कुरान पाक में इसका जिक्र है और फिर अंबिया इकराम ने भी इसके लिए दुआएं की हैं।
अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम 70 तकरीबन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने जैतून के दरख्त के लिए दुआ की। 3000 साल कम अज कम इसकी उम्र होती है। उलमा इकराम फरमाते माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, जैतून अल्लाह पाक की नेमत है, यकीनन नेमत है। वत्तीन वज़्ज़ैतून, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। और भी जगह पर जैतून का जिक्र है, ये तो सूरत में, इसी तरह और भी जगह पर जैतून का जिक्र है कुरान पाक में। तो अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने वाला बनाया। प्यारे बच्चों, और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाल्लाह ब्लेसिंग स्टॉल हमने शामिल किया था और माशाल्लाह हसन रजा भाई ने बड़ी प्यारी इन्फॉर्मेशन जैतून के बारे में दी। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, बढ़ेंगे प्रोग्राम के इख्तिताम पर। और आज इंशाल्लाह जो अच्छी बात हम लेकर आए हैं, सीखने वाली बात आपके लिए, वो ये है, तवज्जो से सुनिएगा प्यारे बच्चों। हमारा टॉपिक है आज जहन्नम में ले जाने वाले आमाल, जहन्नम में
ले जाने वाले,
उनमें से कोई एक दो हम सुनेंगे। हमने पिछले दिनों जन्नत में ले जाने वाली चीजों का जिक्र किया, नेकियों का जिक्र किया और जो छोटी छोटी नेकियां होती हैं उनके बारे में आपको बताया था। आज जो है जहन्नम में ले जाने वाला एक अमल। प्यारे बच्चों, अव्वलन तो ये समझें फर्स्ट कि जहन्नम क्या है। जहन्नम एक ऐसी जगह है जिसे अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो अल्लाह पाक पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह पाक पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह पाक का हुक्म नहीं मानते और उसकी नाफरमानी करते हैं, उसकी नाफरमानी करते रहते हैं। आज हम इंशाल्लाह कुछ ऐसे कामों के बारे में सुनेंगे कि जिनके करने वालों को अल्लाह पाक जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। कहाँ दाखिल फरमाएगा? जहन्नम में दाखिल कर सकता है। कहाँ दाखिल कर सकता है? जहन्नम में। आइए प्यारे बच्चों, एक तो यह है कि कोई भी नेक काम इसलिए करना कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारी
तारीफ करें,
यानी दिखावे के लिए अच्छे और नेक काम करना, तो ऐसा करने वाले की कोई नेकी कबूल नहीं होती, कोई भी नेकी
कबूल नहीं होती,
कोई फायदा नहीं। यानी आप नेकियां करते रहें, लेकिन नीयत क्या है आपकी? लोगों को दिखाने के लिए। अल्लाह की रजा आपकी नीयत नहीं है। लोगों को दिखाना कि मैं नमाजी भी हूँ, मैं इतना अच्छा भी हूँ, मैं ये भी अच्छे से करता हूँ, अच्छा मैं यूं भी हूँ, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए सदका कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए पैसा बहुत ज्यादा है राय खुदा में खर्च कर रहे हैं, हालांकि राय खुदा की नीयत नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं है कर रहे हैं आप ये। तो ये सारी चीजें अगरचे नेकियां बज़ाहिर नजर आती हैं, लेकिन करने वाले को कोई नेकी नहीं मिलती। प्यारे बच्चों, आइए इसी के मुतालिक हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह पाक ने हर रियाकार पर जन्नत हराम कर दी है। रियाकार पर जन्नत, व्हाट इज रियाकार? ये रियाकार क्या है आखिर? रियाकार क्या है? यानी जो लोग नेकियां अल्लाह पाक को राजी करने के लिए नहीं करते बल्कि लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। इसी तरह जेलसी करने वाले के बारे में, हसद, क्या हसद? जेलस, जेलस पर्सन होता ना, नफरत बहुत होती है उसके अंदर, और अल्लाह पाक हमें हासिदीन के हसद से बचाए वाकई में। यानी जो ये हसद करने वाला शख्स होता है ना, इसको आपकी खुशी जरा बराबर भी नहीं अच्छी लगेगी, बददुआएं भी करेगा हो सकता है आपके लिए, यानी ऐसी ऐसी बददुआएं कर रहा होगा आपके लिए, क्योंकि इसको आपकी खुशी से मजा नहीं आ रहा होगा, हाँ आपको नुकसान होगा, इसको मजा आएगा। ये होता है जेलस पर्सन, हसद करने वाला। आइए सुनते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इसके बारे में। फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हसद यानी जेलसी नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। आग जलाते हैं, लकड़ियां किस तरह खत्म हो जाती हैं, इस तरह हसद, जो हसद करने वाला होता है उसकी अपनी नेकियां खा जाता है। यानी हसद वो कर रहा किसी और से, उसके अंदर ये सिफत पाई जा रही है हसद की, लेकिन उसकी नेकियां जा रही हैं, उसकी नेकियां जा रही है, कंटिन्यूसली जाया हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। जिस तरह आग लकड़ी को जला देती है, इस तरह हसद नेकियों को खत्म कर देता है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह मुसलमान को परेशान करना, तकलीफ देना, किसी को धोखा देना, वालिदैन की नाफरमानी करना, जबान से बुरी बुरी बातें निकालना, غصہ کرنا، چغلی کرنا، چھپ چھپ کر غیبتیں کرنا، دوسروں کی برائیاں کرنا، جھگڑا کرنا، کسی کا نام بگاڑنا، یہ ایسے کام ہیں جن کے بارے میں ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ کام ہے پیارے بچوں کہ جو بندے کو جہنم میں داخل کروا سکتے ہیں، تو ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے۔ اور آج جو ہم نے سیکھا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے بچائے، حسد کرنے سے بچائے، اچھی اچھی چیزیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کسی سے حسد نہ کریں۔ جو آپ سے کرتا ہے وہ تو الگ ہے، یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں کسی سے حسد نہیں کروں گا، میں کسی سے حسد نہیں۔ یعنی آپ سوچیں آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے دوسرے کی خوشی سے، کتنی غلط بات ہے یہ۔ یعنی دوسرا خوش ہو رہا ہے، اس کو ترقی مل رہی ہے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ شیطان ہے۔ کون ہے یہ؟ نہیں، شیطان لگا ہوا اس کے پیچھے جو اس سے حسد کروا رہا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے اس کے اندر کہ اس کو دیکھو کہاں پہنچ گیا، ارے وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے، وہ تو اس سے بھی آتا ہے نا، اس قابل نہیں ہے وہ تو، اس کو اتنی ترقی مل گئی ہے اور میں دیکھو، پھر دعا کرتے ہیں کہ اس کی نعمت چھن جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں رش کریں، کیا کریں؟ رش کریں۔ مثال کے طور پر مدینہ جا رہا ہے، اس کی قسمت پہ رش آ رہا ہے کہ وہ مدینہ کو جا رہا ہے، تو رش کریں کہ کاش مجھے بھی مدینہ کی سعادت نصیب ہو۔ یہ آن نیکی کر رہا ہے کوئی، مثال کے طور پر کوئی پانچ وقت کا نماز یہ اچھے انداز میں نمازیں پڑھتا ہے، آپ رش کریں کہ کاش مجھے بھی، بلکہ آپ کو پڑھنی تو ہے لیکن نیکیوں میں تو رش کریں نا، حسد کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کوئی صدقہ و خیرات کر رہا ہے، آپ سوچیں کہ اللہ پاک مجھے اگر اتنا مال عطا فرمائے گا، یعنی جتنا ہے اتنا تو کم از کم خرچ کریں۔ والدین بچوں کو، بچے والدین سے کہیں گے، ظاہر سی بات ہے بچے تو خرچ نہیں کریں گے۔ نیکیوں میں حریص بنیں، گناہوں میں حریص نہ بنیں، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ انشاءاللہ یہ جو حسد نہیں ہوتا نا بندے کے اندر، تو محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملتی ہیں۔ معاشرہ ایک اچھے انداز میں رہتا ہے، دوسرے ملاقات کرتے ہیں، اچھے انداز میں ملتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں سے بچائے جو باتیں جہنم میں لے جانے والی ہیں، اور جنت میں لے جانے والے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت اختتام پر ہو رہا ہے، ہمارا پروگرام بھی اینڈ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے، کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے رمضان کی رونق کے پروگرام لے کر۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم۔ رمضان کی رونقیں رونقیں، رمضان رمضان رمضان، خدر صد المدینہ یہاں، دار المدینہ یہاں، آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں رونقیں، رمضان رمضان رمضان۔